पे थे स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, सुनते हैं कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सबने देखा कि हमें परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा के सहायता की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमें परखने की भी आवश्यकता है कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें किन किन बातों पर और ध्यान करना है। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने फिर से यह दिन दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर अपने रेडियो के साथ में बैठे हुए हैं ताकि आपके वचन का अध्ययन एक साथ हम मिलकर करें, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदय में स्पष्ट होने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। पिताजी, आप हम सब की सहायता करें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और चिंता में हैं, तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उन्हें भी उनकी इन बीमारियों से छुटकारा दें ताकि वे अपने जीवन में शांति पाकर आपकी निकटता में आ सकें, आपसे प्रेम कर सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। वचन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि किस प्रकार हमें झूठे शिक्षकों से बचना है और पवित्र आत्मा के परख में होकर के चलना है। आज अनेक प्रचारक हैं जो प्रभु यीशु के नाम में प्रचार करते हैं, परंतु हमें यूहन्ना कहता है कि हमें उन्हें वचन से परख करके देखना है कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा अंतर्वास करता है जो नया जन्म पा चुके हैं और सत्य को प्रकट करता है। अतः वह जो सच्चा विश्वासी है न तो असत्य का प्रचार करता है और न ही असत्य द्वारा बहकाया जाता है। सत्य की पहचान के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से ही हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर की संतान बाइबल के प्रति प्रतिक्रिया दिखाती है। जो बाइबल की बातों को स्वीकार नहीं करता वह परमेश्वर का नहीं है। जी हां, आइए हम आगे बढ़ते हुए पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें, जहां पर यूहन्ना हमें इस प्रकार से कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। यह एक और परीक्षण है कि आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं। मैं यह नहीं पूछता कि आप अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों से प्रेम करते हैं या नहीं। मैं पूछता हूं कि आप क्या अन्य विश्वासियों से प्रेम करते हैं, क्या आप उनसे प्रेम रखते हैं। अब कोई कहेगा, मैं कुछ से प्रेम करता हूं। यह सहायक है, आप सही दिशा में अग्रसर हैं। कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जिनसे प्रेम नहीं किया जा सकता है, परंतु हम उनकी चिंता करके उनकी सुधि लेकर प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप उनके गले में हाथ डालें, आपका प्रेम उनकी सुधि लेने में प्रकट होता है। मेरे मित्रों, यूहन्ना परमेश्वर की एक और परिभाषा देता है, परमेश्वर प्रेम है। जी हां, परमेश्वर प्रेम है। इस छोटी पुस्तक में परमेश्वर की 3 महान परिभाषाएं हैं। पहला, परमेश्वर ज्योति है, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में, जो अध्याय 1 उसके 1 पद में से 2 अध्याय के 2 का विषय था, और दूसरा है परमेश्वर प्रेम है, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 8 से 16 पद में। इस पत्री का मुख्य विषय या विचार 2 अध्याय उसके 3 से 4 अध्याय के 21 पद हैं, और तीसरा है परमेश्वर जीवन है, जो अध्याय 5 का विषय है। ये 3 अनुपम परिभाषाएं इस पत्री के 3 भाग हैं। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और पद 16 में इसे दोहराता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस तथ्य को प्रकट करती है कि मसीही विश्वास परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। एक बुद्धिजीवी वर्ग की एक स्त्री ने मुझसे कहा, मसीही अंधविश्वास और धार्मिक आस्थाओं के कारण मुझे बाइबल की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए केवल इतना ही बहुत है कि परमेश्वर प्रेम है। मैंने उससे पूछा, क्या आप उस प्रेम को जानती हैं? उसने कहा, क्यों, मैं निसंदेह जानती हूं, सब जानते हैं। मैंने पूछा, क्या भारत में लोग जानते हैं? जहां एक पिता अपने पापों की क्षमा के लिए अपने शिशु को नरबलि करके चढ़ा देता है, और कभी कभी लोग सिद्धि पाने के लिए मगरमच्छ को अपने बच्चों को खिला देते हैं, क्या वह इस प्रेम को जानता है? ओह, वह अज्ञानी है, अंधविश्वासी है। उसने कहा, क्या अफ्रीका के मूर्ति पूजक आदिवासी या अन्य देशों के अंधकारवासी लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है? उसने कहा, शायद वे नहीं जानते, परंतु समय निकट है, सब इस संसार में तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परंतु हमें किसने बताया कि परमेश्वर प्रेम है? हमने इसे कैसे खोजा? उसने कहा, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझी, क्योंकि मैं तो सदा ही जानती थी कि परमेश्वर प्रेम है। मैंने उससे कहा, संसार में कोई नहीं जानता था जब तक कि वह स्वर्ग से प्रकट नहीं हुआ और परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं गया, यह केवल वही है और कहीं नहीं। यह प्राचीन युग के साहित्य में भी कहीं नहीं पाया जाता है। मेरे मित्रों, यह सच है कि इस बात को आप सिर्फ परमेश्वर के वचन में ही देख पाते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर आपसे कैसे प्रेम करता है, यह प्रकृति में तो पाया नहीं जाता। प्रकृति में तो खून पीने वाले दांत और नोचने वाले पंजे ही पाए जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम कलवरी पर प्रकट होता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। जी हां, उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, यह उसके प्रेम का प्रमाण है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस लिखता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। ना तो मैंने कभी ऐसा कोई मनुष्य देखा और न ही आपने देखा होगा, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए मरने हेतु अपना पुत्र दे दिया। क्या इसलिए कि हमने संडे स्कूल में पुरस्कार जीता या आराधना का एक दिन भी नहीं छोड़ा? जी नहीं, जब हम पाप ही में थे तब। रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया था। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वह प्रेम परमेश्वर में है और वह हमारी ओर से नहीं है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। प्रभु यीशु के ईश्वरत्व विरोधियों के लिए यह एक और पद है। प्रभु यीशु परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, अर्थात वह पिता परमेश्वर के साथ अद्वितीय संबंध रखता है। वह सृजा नहीं गया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी अपने पुत्र कहा है। वह प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को भी पुत्र होने का अधिकार देता है, परंतु प्रभु यीशु उसका एकलौता पुत्र है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 17 पद में इसहाक को अब्राहम का एकलौता पुत्र कहा गया है, जबकि इसहाक से पूर्व इश्माइल उसका पुत्र था और इसहाक से अधिक अब्राहम के स्वरूप में था। इसहाक के बाद उसके और भी पुत्र उत्पन्न हुए थे, परंतु इसहाक को उसका एकलौता पुत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म चमत्कारी था और उसका संबंध पिता से अद्वितीय था। प्रभु यीशु परमेश्वर का अनंत पुत्र है। अनंत पिता अनंत पुत्र का ही हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का एकलौता पुत्र अर्थात अद्वितीय पुत्र। अन्य सब सृजित पुत्र हैं, जैसे आदम या स्वर्गदूत या नया जन्म पाकर उसके पुत्र बने हैं, जैसे विश्वासी, परंतु प्रभु यीशु एक अद्वितीय पुत्र है। लिखा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा कैसे जीवन पाते हैं? उसकी मृत्यु हमें जीवन दान देती है। पहला योना के पत्र 4 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यूहन्ना ने प्रायश्चित शब्द का प्रयोग पहले भी किया है, पहला योना की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। बाइबल में 2 शब्दों का अनुवाद प्रायश्चित किया गया है। डॉक्टर एटी रॉबर्टसन कहते हैं कि यहां प्रायश्चित शब्द पुत्र के संबंध में गुणवाचक कर्म कारण है। प्रायश्चित का अर्थ पुराने नियम में दया आसन है, जिसका मूल अर्थ है ढांकना। मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र स्थान था जिसमें वाचा का संदूक रखा हुआ था, जिसके ऊपर नक्काशी किया हुआ एक ढक्कन था और दो सोने के करूब आमने सामने उस ढक्कन को देखते हुए बनाए गए थे। वाचा का संदूक बहुत ही सुंदर था और खैर की लकड़ी से बना था जिस पर सोना मढ़ा हुआ था। इसके ढक्कन को दया आसन कहते थे। इसके समक्ष इसराइल के प्रतिनिधित्व करते हुए महायाजक उपस्थित होता था। वह वर्ष में केवल एक ही दिन वहां आता था और इस ढक्कन पर बलि का लहू छिड़कता था। परमेश्वर से भेंट करने का उनके लिए मात्र एक यही विधि थी, अतः इसे दया आसन कहते थे। परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता था, परंतु वह प्रेम के कारण उन्हें कैसे भी अपनी उपस्थिति में नहीं आने देता था। प्रायश्चित दिवस पर महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके दया आसन पर लहू छिड़कता था। इसका अर्थ था कि परमेश्वर ने एक वर्ष के लिए इसराइल को स्वीकार किया है। अगले वर्ष प्रायश्चित के दिन उन्हें फिर महायाजक के माध्यम से दया आसन पर लहू चढ़ाना होता था। मेरे मित्रों, इस पद में प्रभु यीशु को प्रायश्चित कहा गया है, हमारे पापों का प्रायश्चित, अर्थात वह हमारे पापों का दया आसन है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। उसने हमारे लिए पापों की बलि बना जिससे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का साहस कर पाए। अब वह आसन हमारे लिए अनुग्रह की सिंहासन बन गया है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए यह किया और यह परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शन करता है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में यूहन्ना 2 बार कहता है परमेश्वर प्रेम है, पद 8 और पद 16 में। यह एक महान बात है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप कुछ और देखें। आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर दया है, आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर अनुग्रह है, आप यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर न्यायी है। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। इसका अर्थ यही है। आप यह भी कह सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परंतु मैं कहता हूं कि परमेश्वर प्रेमातुर होकर हमारा उद्धार नहीं करता है। वह स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन करके हमें स्वर्ग में नहीं लेगा, न ही वह हमें चुपचाप पिछले द्वार से स्वर्ग में लेगा। वह पवित्र और धर्मी है, इसलिए ऐसा कभी वह नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आज की त्रासदी है कि मनुष्य सोचता है कानून एवं न्याय को खरीदा जा सकता है, धनवान दंड से बच जाता है और गरीब दंड भोगता है। निसंदेह परमेश्वर प्रेम है, परंतु वह पवित्र और धर्मी है, इसलिए उसे हमारे पाप के लिए कुछ करना होगा। वह जो भी करता है वह उचित होता है। उसने अपने पुत्र को हमारे पापों का दंड मृत्यु भोगने को भेज दिया कि वह आकर हमारा उद्धार करे, हमें छुटकारा दे, पापों से छुड़ाए। पवित्र परमेश्वर के पास हमारे उद्धार का मात्र यही एक मार्ग था। प्रभु यीशु दया आसन है जहां परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हां, हर एक मनुष्य जो उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। आपको सिर्फ यही करना है कि आप उस पर विश्वास करें। लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए नहीं दिया कि हम उससे प्रेम करते हैं, या हम अति सुंदर हैं, या बहुत अच्छे हैं, या हमने कुछ करने की मन्नत मानी है। हमें यह बोध होना है कि हम पापी हैं। रोमियो की पत्री 5:8 में पौलुस कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यह परमेश्वर का प्रबंध था और वह इसे मानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग और जीवन और सत्य मैं ही हूं, बिना उसके पिता के पास कोई भी नहीं आ सकता है। आप केवल उसी के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अन्य कोई भी मार्ग आपको परमेश्वर के पास नहीं ला सकता। यह सोचना मूर्खता है कि परमेश्वर प्रेम है इसलिए सब कुछ ठीक ठाक होगा और सब लोग स्वर्ग जाएंगे, परंतु खोए हुए सब अनंत विनाश में और उद्धार प्राप्त सब अनंत जीवन में जाएंगे। क्या आपके लिए सब कुछ ठीक है? यदि आप परमेश्वर का मार्ग अपनाएंगे तो सब ठीक है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको जानना है कि आप किस मार्ग पर हैं और कौन सा मार्ग आप अपना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको पिछले द्वार से स्वर्ग में नहीं लेगा। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा कि वही प्रभु है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ही है जिसने हम सबके पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपने उस बहुमूल्य और कीमती लहू को हमारे पापों के बदले में बहा दिया, ताकि हम उसके द्वारा से अपने पापों से मोक्ष पाएं, छुटकारा पाएं, हमारे पाप धुल जाएं। किसी भी रीति से आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। सिर्फ एक ही मार्ग है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। बिना उद्धार के आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यदि आपको उद्धार पाना है तो अंततः आपको प्रभु यीशु के पास ही आना होगा, क्योंकि वही हमारे लिए मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यूहन्ना यह भी कहता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप निश्चय ही इस बात को जान लें कि सत्य आपके निकट है। यदि आप सत्य को स्वीकार करेंगे तो आप अपने जीवन में स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस वचन के प्रकाशन में हम अपने जीवन को जांचें और देखें कि हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है। हम कहते तो हैं कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी करें वह आपको दंड नहीं देगा। इस बात को भी ध्यान में रखें कि वह न्यायी है और वह न्याय भी करता है। अर्थात जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उद्धार प्राप्त किए हुए हैं, वे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और बाकी नरक में भेजे जाएंगे। आप कहां जाना पसंद करेंगे? निर्णय आपके हाथ में है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तेरे चरणों में मैं झुका
सच्चा
तेरे चरणों में मैं झुका, आए हैं हम तेरी शरण में लेके इच्छा प्यासे मन में, जीवन जल मुझको पी